नमस्कार भारत 6 नवंबर दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रचार अभियान चरम पर। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे आज से भारत के दौरे पर।
ब्रिटेन को अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की जरूरत पड़ गई है, तो इसलिए भारत से वो शुरू कर रही है। मेरे ख्याल से व्यापार का जो मसला होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा।
दिल्ली के आसमान से कैसे छटेंगे धूल और धुएं के बादल।
2 करोड़ लोग जो दिल्ली के निवासी हैं, वो अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे ही कदम हैं से उठाएं। मुझे लगता है कि सब अपनी अपनी भूमिका करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी।
समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन मतदान से 3 दिन पहले फ्लोरिडा में वोटरों को रिझाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। फ्लोरिडा के बाद हिलरी क्लिंटन पेंसिल्वेनिया और डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा में रैली कर रहे हैं। ये स्विंग स्टेट ऐसे राज्य हैं जिनका झुकाव अभी किसी उम्मीदवार की तरफ साफ नजर नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 40 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ माने जाने वाले मिनेसोटा में भी रैली करने जाएंगे। ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना की एक रैली में कहा कि वो राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वास्थ्य कार्यक्रम ओबामा केयर को खत्म कर देंगे।
Things could be slightly awkward later when the Prime Minister calls the European Union's top boss.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3 दिन में हम नॉर्थ कैरोलिना को जीत लेंगे और फिर व्हाइट हाउस को भी जीत लेंगे, इसके तुरंत बाद बदलाव शुरू होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो ओबामा केयर को ख़त्म कर देंगे। ये घोषणा की गई है कि नॉर्थ कैरोलिना में लोगों को बढ़ावा प्रीमियम देना होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने असमिया भाषा के न्यूज़ टाइम असम नामक एक चैनल पर 1 दिन का प्रतिबंध लगाया है। चैनल पर आरोप है कि उसने समाचार संबंधित अपने एक कार्यक्रम में दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। एनडीटीवी इंडिया के बाद न्यूज़ टाइम असम द्वारा न्यूज़ चैनल है दूसरा न्यूज़ चैनल है जिस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 दिन का प्रतिबंध लगाया है। चैनल को मिले नोटिस के अनुसार न्यूज़ टाइम असम को आगामी 9 नवम्बर को 24 घंटे के लिए प्रसारण बंद करने को कहा गया है। तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल के मुख्य अतातुर्क हवाई अड्डे के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों पर गोलियां चलाई हैं। इनमें से 1 व्यक्ति को चोट लगी है और दूसरे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस घटना से हवाई अड्डे से विमानों की उड़ानों को कोई भी असर नहीं पड़ा है। बांग्लादेश में पुलिस ने हिंदू समुदाय के लोगों पर पिछले रविवार से शुरू हुए हमले के सिलसिले में कई और गिरफ्तारियां की हैं। इन संदिग्धों को करीब 17 हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों के 100 से ज़्यादा घरों पर हमले के मामले में पकड़ा गया है। इन हमलों में कई लोग घायल हो गए थे। इस दौरान आगजनी में सत्तारूढ़ आवामी लीग के स्थानीय हिंदू नेता के घर को भी जला दिया गया था। यह हिंसक तनाव एक फेसबुक पोस्ट में कथित तौर पर इस्लामिक पवित्र स्थल मक्का का मजाक उड़ाए जाने पर शुरू हुआ। जिस व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका कहना है कि उसका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अति सुरक्षा वाले संसद के पास सेना के काफिले पर चरमपंथी हमले में कम से कम 2 सैनिकों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से, जहां 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन ने फ्लोरिडा के मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। और जानकारी के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
अमरीका के नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए 8 नवम्बर को होने वाले चुनाव में अब चंद दिन ही रह गए हैं। लेकिन अगला राष्ट्रपति कौन होगा इस मुद्दे पर देश बराबर बटा हुआ लग रहा है। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अब हिलरी क्लिंटन को 46% वोटरों का समर्थन प्राप्त है तो डोनाल्ड ट्रंप को 45% वोटर समर्थन दे रहे हैं। कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन दोनों अब चुनाव से 3 दिन पहले फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और नॉर्थ कैरोलिना जैसी अहम प्रांतों में दर्जनों रैलियां कर रहे हैं। इन प्रांतों में भी क्लिंटन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है और नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। फ्लोरिडा में अफ्रीकी मूल के और लातिनी मूल के अमरीकी वोटरों की हिमायत निर्णायक मानी जा रही है। इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना में अफ्रीकी मूल के वोटर भी अधिक संख्या में हैं और उनकी हिमायत जीत के लिए जरूरी मानी जा रही है। ट्रंप की कोशिश है कि वो फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में हिलरी क्लिंटन को समर्थन देने वाले अफ्रीकी मूल के अमरीकी और लातिनी अमरीकी वोटरों को अपनी तरफ रिझा सकें। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान अफ्रीकी अमरीकी और लातिनी मूल के वोटरों को संबोधित करते हुए कहा,
We're going to fix the education, we're going to bring back jobs, and we're going to bring back safety. And I say to the Hispanic community living in the
कि वो नौकरियां वापस लाएंगे और शिक्षा और सुरक्षा के हालात बेहतर करेंगे। वहीं हिलरी क्लिंटन अपने अश्वेत अमरीकी और लातिनी अमरीकी समर्थकों से ये बार बार अपील कर रही हैं कि जिन प्रांतों में 8 नवंबर के चुनाव वाले दिन से पहले ही वोटिंग शुरू हो गई है वहां अधिक से अधिक संख्या में उनके समर्थक वोट डालने निकले। फ्लोरिडा में रैली के दौरान हिलरी क्लिंटन अपने समर्थकों से कह रही थी कि ट्रंप के बारे में तो सारी बातें आप जानते ही हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं तो सबके लिए राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, उनके लिए भी जो मुझसे सहमत हैं और जो सहमत नहीं हैं, जो मुझे वोट दे रहे हैं या मुझे वोट नहीं दे रहे, तो सब वोट देने के लिए निकलिए और अपने भविष्य के लिए वोट देने निकलिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए वोट देने निकलिए। ये थे हिलरी क्लिंटन के शब्द। अमेरिका भर में 38 प्रांतों में चुनाव के दिन से पहले ही वोट डालने का प्रावधान है और इस बार के चुनाव में देश भर में अब तक 4 करोड़ अमरीकी वोटर मतदान कर चुके हैं। फ्लोरिडा में कई दिनों से वोटिंग जारी है और अब तक करीब 60 लाख लोग वोट दे चुके हैं, जो कुल वोटरों का करीब 30% होता है। लेकिन हिलरी क्लिंटन को हिमायत देने वाले अश्वेत अमरीकी 2012 में होने वाले बराक ओबामा के चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव में 7% कम वोट डालने निकल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इससे हिलरी क्लिंटन को फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना जैसे अहम प्रांतों में नुकसान हो सकता है। नॉर्थ कैरोलिना में शनिवार को वोटिंग रुक जाएगी, फिर 8 नवंबर को चुनाव वाले दिन ही फिर से वोटिंग शुरू होगी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
इधर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे आज भारत आ रही हैं। बीबीसी के दक्षिण एशिया संवाददाता जस्टिन रोलेट ने इस संबंध में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात की तो उनका कहना था कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। एक रिपोर्ट के साथ मोहनलाल शर्मा।
भारत ब्रिटेन संबंधों में नया अध्याय जोड़ने की उम्मीदों के साथ ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे का 3 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो रहा है। भारत दौरे पर उनके साथ एक वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। टेरिजा मे के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से टेरिजा मे का ये यूरोप के बाहर पहला द्विपक्षीय दौरा है। उनके भारत आने के पहले बीबीसी के दक्षिण एशिया संवाददाता जस्टिन रॉलेट ने भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात की और पूछा कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने यूरोप के बाहर पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए भारत को ही क्यों चुना। इस सवाल के जवाब में अरुण जेटली का कहना था,
I think it is significant. It's significant because even after Prime Minister Cameron had taken over, his first overseas.
मुझे लगता है कि ये अहम बात है। अहम इसलिए कि जब कैमरन प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पहला दौरा भारत का ही किया था। अपने कार्यकाल के दौरान वो कई बार भारत आए। मैं मानता हूँ कि भारत और ब्रिटेन के पारंपरिक सांस्कृतिक लोगों के बीच के रिश्ते और सबसे अहम वाणिज्यिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं।
ये थे भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली के शब्द। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद डेविड कैमरन को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और उनकी सरकार में गृह मंत्री रहीं टेरिजा मे प्रधानमंत्री बनी। वो ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। टेरिजा मे कह चुकी हैं कि ब्रिटेन अगले साल मार्च में यूरोपीय संघ से निकलने को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू करेगा। टेरिजा मे और ब्रिटेन के लिए आने वाला समय चुनौतियों से भरा हो सकता है। ऐसे दौर में भारत जैसे सहयोगियों के साथ रिश्तों की अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्तों के मौजूदा आंकड़े बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बातचीत में जब ये जानकारी दी कि व्यापार से जुड़े आंकड़ों के लिहाज से दोनों देशों के बीच व्यापारिक वृद्धि निराश करने वाली है, तो इसके जवाब में अरुण जेटली बोले,
We are one of the biggest investors in the United Kingdom. United Kingdom companies are one of the biggest investors in India.
हम यूके में सबसे ज्यादा निवेश करने वालों में हैं। यूके की कंपनियां भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल हैं। और ऐसे में कथित तौर पर साधारण आंकड़ों के बाद भी एक दूसरे के साथ व्यापार अपेक्षाकृत काफी बड़े पैमाने पर होता है और आगे इसमें इजाफा होगा। ब्रेक्सिट के बाद ये बहुत अहम है कि भारत और यूके दोनों दुनिया की तरफ देख रहे हैं। पारंपरिक रूप से व्यापारिक साझेदार होने की वजह से मुझे लगता है कि यूके जिन क्षेत्रों पर गौर करेगा हम भी उन्हें देखना चाहेंगे, जिससे हमारे व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हों।
ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली के शब्द। इतिहास के एक छोर से रिश्ते की डोर में बंधे भारत और ब्रिटेन अब अपने संबंधों को और मजबूती देने के इरादे में हैं। दोनों सरकारें टेरेसा मे के दौरे को इस लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही हैं।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे का भारत दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसमें किन मुद्दों पर जोर रहेगा, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल राय ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रहे शिवशंकर मुखर्जी से बात की।
देखिए, दोनों तरह से मेरे ख्याल विजिट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो वैसे भी ब्रेक्सिट हो या ना हो, भारत के रिश्ते ब्रिटेन के साथ काफी विकसित हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोनों देशों के लिए, पॉलिटिकली, व्यापार के हिसाब से, एजुकेशन सेक्टर में। तो इस समय तो एक और एस्पेक्ट आ गया है, क्योंकि विजिट ये हो रहा है एक ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग होने जा रहा है, हमारे जो व्यापार हैं, व्यापार के जो रिश्ते हैं उस पे तो जरूर दोनों देशों को चिंता है कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। ब्रिटेन इस समय आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ा मसला उनके लिए ये है कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ जब थे, जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे ब्रिटेन के, वो अब तो लागू नहीं होंगे, तो ब्रिटेन को अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग रीजनल एसोसिएशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की जरूरत पड़ गई है। तो इसलिए भारत से वो शुरू कर रही हैं। मेरे ख्याल से व्यापार का जो मसला होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से भारत की जो सिचुएशन है उसमें अगर देखा जाए तो टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिक्योरिटी इश्यूज, ये तो जरूर डिस्कस होंगे, क्योंकि ये हर तरह से इम्पोर्टेंट हैं।
वीजा नीति की बात होती है ब्रिटेन की, जिसमें उसने बदलाव किया है, क्या ये मुद्दा भी उठेगा?
मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि काफी सालों से ये चल रहा है, अमरीका के साथ भी चल रहा था, वहाँ जो H-1B वीजा वगैरह होते हैं, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं IT सेक्टर में और स्टूडेंट्स, इन दोनों एरियाज में भारत को हमेशा कंप्लेंट रहा है कि इनमें दिक्कतें रास्ते में आ जाती हैं, वीजा रेजीम को जब टाइट किया जाता है और रूल्स ऐसे बनाए जाते हैं कि एक तरफ से आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स जाने में मुश्किल हो जाता है अपने बिजनेस के लिए, और दूसरा ये जो स्टूडेंट्स पे जो सख्ती लगाई गई है कि पोस्ट स्टडी के लिए जो थोड़ा समय दिया जाता था काम करने के लिए, एक्सपीरियंस ज्ञान करने के लिए, वो अब रोका जा रहा है, और उसका असर काफी जबरदस्त पड़ा है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स यूके में जाते थे उससे तकरीबन 50% डाउन हो गया है पिछले 2-3 सालों में। तो ये एक इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि ये सिर्फ ये एजुकेशन सेक्टर का जो रिश्ता है हमारा और हायर एजुकेशन का जो लैंग्वेज है भारत में भी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। इस पे मेरे ख्याल डिस्कशन हमारी साइड जरूर रेज करेगी। मेरे ख्याल
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के भारत दौरे का महत्व बता रहे थे भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिवशंकर मुखर्जी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आज 6 नवंबर दिन रविवार, बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में आगे खबरें भारत से, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। हरिता कांडपाल स्टूडियो में तमाम अखबारों के साथ आ चुकी हैं।
दिल्ली से छपने वाले तमाम अखबारों की आज की सुर्खियों में, जैसे कि पिछले कई दिनों से छाया है दिल्ली का वो जहरीला धुआं है, सारे ही अखबारों की पहली सुर्खी बताती हूँ। जनसत्ता ने लिखा है कि नासा की आंखों ने देखा जल्दी फसलों का धुआं छाया आसमान पर। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है, नासा के सैटेलाइट ने खींची है ये तस्वीर। पंजाब में जो खरीफ की फसलों के जलाए जा रहे ठूंठ से निकला ये धुआं, उसकी तस्वीर दिखाई गई है। और इसी पर द पायनियर की एक हेडलाइन है टॉक्सिसिटी, दिल्ली के बारे में लिखा है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर खबर दी है कि दिल्ली की जहरीली धुंध के कारण रणजी ट्रॉफी के दो मैच शनिवार को जो शुरू होने वाले थे वो नहीं हो सके हैं शुरू। बंगाल की टीम के खिलाड़ियों ने मास्क की मांग की, उन्होंने प्रैक्टिस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये मैच शुरू नहीं किए जा सके, तो इतनी गंभीर स्थिति हो चुकी है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि केजरीवाल ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के सबसे बुरे दौर से जो दिल्ली गुजर रही है और उसमें केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए और सोमवार को जो है एक बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा अखबार ने एक तस्वीर भी छापी है, इंडिया गेट की तस्वीर है जो कि धुंध में छिप गया है, कहीं इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा। एक छोटा सा बच्चा खिलौना गाड़ी में आगे बैठा है और इसमें यह लिखा है कि लोग साइट सीइंग के लिए तो आए हैं, मतलब कि घूमने के लिए, देखने के लिए, लेकिन देखें क्या, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर लिखा है कि प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली शनिवार को जिसे स्लेटी कफन से ढकी थी, क्योंकि शनिवार का दिन मौसम का सबसे प्रदूषित दिन था और इस दिन काफ़ी खतरनाक स्तर पर जो है प्रदूषण फैलाने वाले कण पहुंचे हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसी तरह की एक खबर छापी है, पाकिस्तान के पंजाब में भी बढ़े हुए प्रदूषण के कारण धुंध छाई है और इतनी स्थिति गंभीर हो चुकी है वहाँ पे कि ट्रैफिक हादसों में जो है अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। तो पाकिस्तान के पंजाब में भी कुछ इसी तरह की हालत है जो दिल्ली में हम देख रहे हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है प्रमुखता से, बड़े स्टार्टअप जो हैं वो आजकल जो है नियुक्तियां कर रहे हैं लेकिन वो आईआईटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। आईआईटी में आजकल प्लेसमेंट सीज़न होता है और फ्लिपकार्ट, ओला कैब, स्नैपडील जैसी बहुत बड़ी कंपनियां जो स्टार्टअप के तौर पर नाम लिया जाता है जिनका, वो आईआईटी की से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि आईआईटी में प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं और वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रतिशत बताई जा रही है प्लेसमेंट की इस बार। अब बात करते हैं अमरीकी चुनाव की, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, दो तीन दिन बचे हैं बस। इंडियन एक्सप्रेस ने दुनिया भर के देशों के अखबारों में क्या कहा जा रहा है अमरीकी चुनाव को लेकर, उस पर लिखा है रशिया बियॉन्ड हेडलाइंस के एक सर्वे के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि रूस अकेला ही ऐसा देश है जहां रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 23% की बढ़त के साथ जीत सकते हैं। वहीं चीन के पीपल्स डेली ने भी अमरीकी चुनाव को लेकर टिप्पणी की है, कहा है कि अमरीकी जो है अब अमरीका का समय आ गया है कि वो अपने अहंकारी लोकतंत्र के बारे में सोचे, अपने वहां की राजनीति के बारे में सोचे। इंडियन एक्सप्रेस ने aljazeera.com के हवाले से कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अमरीकी चुनाव का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि किस तरह के आरोप लगाते हैं, किस तरह एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, क्या ईरान को भी ऐसा ही लोकतंत्र चाहिए। तो ये आज के अखबारों में छाई हैं खबरें।
ये थी हरिता कांडपाल, बता रही थी दिल्ली के अखबारों में क्या छपा है आज और इस पूरे हफ्ते भारत पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में क्या कुछ छपा है, ये बताएंगे हम आपको अगले कार्यक्रम विश्व भारती में सुबह 8 बजे। लेकिन पहले बात दिल्ली की, जहाँ कुछ दिनों से सुबह की हवा में ताजगी महसूस नहीं होती और दिन चढ़ने पर इस बात का एहसास भी बहुत कम होता है कि सूरज वाकई निकल आया है। आसमान पर धूल और धुएं की चादर इस कदर फैली है कि कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल राय ने पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे से बात की।
तो देखिए, पर्यावरण की स्थिति दिल्ली जैसे महानगर में 364 दिन खराब तो थी ही, लेकिन अलग अलग कारणों से वो पिछले 10-12 दिनों के अंदर ज्यादा खराब हो गई और अब वो इतनी है कि उसको बहुत सीरियसली देखना जरूरी है। मैंने राज्य सरकारों को तो एडवाइजरी पहले भी जारी की है, गए साल भी जारी की थी, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके संबंध में गंभीर पहल करने की जरूरत है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला और सूखा पत्ता या जिसको आप एग्रीरियन प्रोड्यूस बोलते हैं, वो जलाने से जो गंदगी फैल रही है उसके कारण ये सारी समस्या है। सभी पर्यावरण मिनिस्टर जो आजू बाजू के राज्यों के हैं उनको दिल्ली बुलाया है, तत्काल जो करना है, लंबी दूरी में जो करना है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो करने से ये सुधर सकती है उस संबंध में हम विचार कर रहे हैं।
दिवाली के पहले से ही इस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इस स्तर तक पहुंच सकता है, तो क्या ये सारी कोशिशों के लिए कुछ देर हो गई है?
मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक चीज को कारण मानना बाजू के राज्यों से पलारी जलने के कारण ये आ रहा है, दिवाली के कारण ये आ रहा है। बेसिकली 364 दिन ही स्थिति खराब थी अलग अलग कारणों से। उसके अंदर ऑटोमोबाइल भी एक कारण है, उसके अंदर सिटी का अर्बन मैनेजमेंट भी एक कारण है। इसका एक कारण आप लैंड की वेस्टफील्ड है, वहां जाइए निरंतर धुआं निकलता रहता है, सुबह झाड़ू लगने के बाद जो कचरा इकट्ठा होता है वो जला दिया जाता है, जनरेटर सेट्स जो हैं वो रात दिन चलते रहते हैं, डीजल कारें जो पुरानी हो गई थी जिसके संबंध में कोर्ट ने कहा था कि इसे फेज आउट करिए, वो सब की सब अभी भी यथावत सड़कों पर है। तो ये सब मिलकर के कारण है।
कुछ फॉर्मूले कोशिश की गई, जैसे ऑड इवन फॉर्मूला लाया गया, तो और क्या कुछ होना चाहिए? एक पर्यावरण मंत्री के तौर पर आप क्या सोचते हैं?
मुझे लगता है कि हर मामले में जो इससे संबंधित कारण है, जो उन सबको एड्रेस करने की जरूरत है। एडवाइजरी जारी करने के बाद में अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो फिर उसके लिए कुछ कठोर नियम भी अगर बनाना पड़े तो बनाना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति बार बार घटना ये अच्छी बात नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि 2 करोड़ लोग जो दिल्ली के निवासी हैं, वो अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे ही कदम हैं, उन कदमों से उसे उठाएं। जैसे मैंने आज ही सोचा कि मेरे पीछे स्टैंड बाय कार चलती है, कल से वो कार नहीं चलेगी, मैं एक गाड़ी से अपना काम चला लूंगा। तो इस प्रकार से हर एक को सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे कम करूँ उसको। मुझे लगता है कि सब अपनी अपनी भूमिका करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी।
ये थे पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे। उधर दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर असम में एक असमिया टीवी चैनल पर संकट के बादल घिराए हैं। चैनल पर प्रसारण संबंधी नियमों के उल्लंघन का आरोप है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने चैनल को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
पूर्वोत्तर राज्य असम में चल रहे न्यूज टाइम असम नामक एक चैनल को प्रसारण नियमों की अनदेखी करने के आरोप में 9 नवंबर को एक दिन के लिए बैन किया गया है। चैनल को भेजे गए नोटिस में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2 नवंबर को एक आदेश जारी कर चैनल को आगामी 9 नवंबर को 24 घंटे के लिए प्रसारण बंद करने को कहा है। न्यूज टाइम असम चैनल पर आरोप है कि उसने प्रसारण संबंधित दिशा निर्देशों का एक से अधिक बार उल्लंघन किया। आरोपों के मुताबिक चैनल ने 2012 में एक खबर प्रसारित की थी जिसमें कथित तौर पर क्रूरता और अत्याचार का शिकार हुए एक नाबालिग घरेलू नौकर की खबर में उसकी पहचान को छिपाया नहीं गया था। मंत्रालय की एक समिति का कहना है कि चैनल पर प्रसारित दृश्यों में बच्चे की गोपनीयता और गरिमा के साथ समझौता करते हुए उसे उजागर कर नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में चैनल को अक्टूबर 2013 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। असम में न्यूज टाइम असम का प्रबंधन देख रहे उत्पल बरुआ ने बीबीसी से कहा। यह मामला 2012 में बाल मजदूरी से जुड़ी हुई एक खबर के प्रसारण से संबंधित है और उस समय इस चैनल का लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति के पास था। अब न्यूज टाइम असम का लाइसेंस मेरे नाम से है, लिहाजा अगर प्रसारण मंत्रालय ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। लिखित में कोई आदेश मुझे नहीं मिला है क्योंकि न्यूज टाइम कोलकाता की कंपनी है और उस समय मैं इस चैनल में था नहीं, तो नोटिस वगैरह कोलकाता ऑफिस को ही भेजे गए थे। काफी दिन हो गए इस बात को। कंपनी ने इसके जवाब में प्रसारण मंत्रालय से अपील भी की है, परंतु अभी कोई नया निर्देश हमें नहीं मिला है। आगे सारे विकल्प खुले हुए हैं। ये थे न्यूज टाइम असम के प्रमुख उत्पल बरुआ के शब्द। बहरहाल अभिव्यक्ति की आजादी पर केंद्र सरकार के कथित हमले को लेकर बहस असम तक छिड़ी हुई है। दिलीप कुमार शर्मा, गुवाहाटी।
इधर उत्तर प्रदेश में शनिवार का दिन राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय रहा। एक ओर समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में तमाम नेता लखनऊ में इकट्ठा थे, तो दूसरी ओर सहारनपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। वहीं लखनऊ में बीएसपी नेता मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
लखनऊ में जिस समय समाजवादी पार्टी अपने रजत जयंती समारोह के दौरान गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही थी, उसी समय राज्य के पश्चिमी छोर पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मकसद से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही थी। यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की। शाह ने इस दौरान भाषण भी दिया और कांग्रेस समेत सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा।
सपा बसपा उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी मित्रों।
अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में महागठबंधन बनाए जाने की खबरों पर भी चुटकी ली और कहा कि नेताओं के हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा, जनता को भी हाथ मिलाना चाहिए। सहारनपुर से निकली पहली परिवर्तन यात्रा 50 दिनों में 109 विधानसभाओं का रास्ता तय करेगी। उधर लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने भी आनन फानन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन पर सवाल उठाए।
सपा द्वारा अधिकांश ऐसे दलों से महागठबंधन करने की बात की जा रही है जिनका अत्यंत सीमित प्रभाव यहाँ उत्तर प्रदेश में है। वैसे भी इनकी महागठबंधन की कोशिश ये बताती है कि सपा ने यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी की हार भी स्वीकार कर ली है।
मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाना है। यही नहीं, उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी पार्टी का मकसद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है।
उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश के विभिन्न राज्यों में भी और अंत में सन 2019 में केंद्र की सत्ता से भाजपा को बाहर करके देश में लोकतंत्र को बचाना है।
मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक उस समय की जब समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह खत्म हो गया। जानकारों का कहना है कि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी सरकार के आने का भय दिखाया है उससे साफ जाहिर है कि वो किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करना चाहती हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पहले तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया में संपन्न एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान को हराते हुए पिछले हफ्ते अपने नाम किया था, तो नहले पर दहला मारते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी सिंगापुर में समाप्त हुई महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। कल खेले गए फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 2-1 से मात दी। मैच का पहला गोल खेल के 13वें मिनट में भारत की दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल कर किया। इसके बाद चीन ने जवाबी हमला बोलते हुए खेल के 44वें मिनट में मेंगलिंग झोंग के मैदानी गोल की मदद से स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। लेकिन खेल के अंतिम 60वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे दीपिका ने गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की। अंततः भारतीय महिला टीम 2-1 से मैच और फाइनल जीतने में कामयाब रही। इससे पहले राउंड रोबिन मुकाबले में चीन ने भारत को 2-1 से हराया था जिसका बदला भारत ने खिताबी जीत के साथ लिया। भारतीय महिला टीम की जीत को लेकर भारत के पूर्व ओलंपियन और चयनकर्ता हरबिंदर सिंह कहते हैं,
तो मेरा मानना है कि ये जो उपलब्धि है चाइना से, हालांकि लीग मैच में हारे थे और 2-1 से फाइनल में जीते हैं, जो हमारी टीम है उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा क्योंकि इस साल हम लोग हालांकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए थे, वहां पर लास्ट पोजीशन आई। उससे पहले फरवरी मार्च में न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, ये जितने दौरे थे वहाँ पर काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रही, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि अंत भला तो सब भला।
वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी बुधवार से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है जिसका पहला टेस्ट मैच राजकोट में खेला जाएगा। कल भारतीय टीम भी राजकोट पहुंच गई। एक तरफ जहां भारत के रोहित शर्मा दाहिनी जांघ में लगी चोट के कारण 2-3 महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहने को मजबूर हो सकते हैं, वहीं इंग्लैंड के लिए राहत की बात है कि उसके अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन फिट होने के बाद अगले हफ्ते टीम से जुड़ जाएंगे। इसके बावजूद जेम्स एंडरसन पहला मैच नहीं खेल सकेंगे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो दूसरे टेस्ट मैच से टीम में वापसी कर सकते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया। कल स्टंप के समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 390 रन था। कल विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक 16 हैं और वर्नोन फिलेंडर 23 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर ने अपने करियर का 5वां शतक जमाते हुए 127 और जेपी ड्यूमिनी ने भी अपने करियर का 5वां शतक बनाते हुए शानदार 141 रन बनाए। अब दक्षिण अफ्रीका के पास 388 रनों की बढ़त है और उसके 4 विकेट बाकी हैं।
भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7 खेल समाचारों के बाद। कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को नेवाडा के रेनो में एक रैली के दौरान आनन फानन में मंच से हटाया गया। ट्रंप ने अचानक भाषण देना बंद कर दिया और उसके बाद सुरक्षाकर्मी जल्द ही उन्हें मंच से ले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप मंच पर लौट आए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने असमिया भाषा के न्यूज टाइम असम नाम के चैनल पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया है। चैनल पर आरोप है कि उसने समाचार संबंधित अपने एक कार्यक्रम में दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल के मुख्य हवाई अड्डे अतातुर्क एयरपोर्ट के पास दो मोटरसाइकिल सवारों पर गोलियां चलाई हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। एक घंटे बाद हम फिर हाजिर होंगे विश्व भारती लेकर। तब तक संदीप सोनी को दीजिए इजाजत।